Saurange Raduti Pada
Thank you.
ඥාන චින්තමණී තරහ බ්‍රජ ගෞර ප්‍රේම රසන වේ චේත රංග දිවරු වේ ගෞර ප්‍රේම රසන වේ චේත රංග දිවරු වේ හේ රාධා මාධව අන්තරංග ගේ භවනේ තෙතකෝ භගෞරංග බෝලේ දකෝ ගේ භවනේ තෙතකේ භගෞරංග බෝලේ දකේ නරතම මගේ කරතුංග නරතම මගේ කරතුංග ගෞරංග රතුති පද ජරධන සම්පද දෙජනේ භක්ති රසතර හරේ කෘෂ්ණ හරේ Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ठाकुर विरचित भजन है सावरण श्री गौर महिमा गौरांग महाप्रभु की महिमा गौरांग जरे दुटिपद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। जो व्यक्ति हैं जिनके जीवन में संपत्ति केवल गौरांग महाप्रभु के दो चरण कमल हैं, वही केवल जान सकता है कि भक्ति रस का सार क्या है। गौरांग मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल दिलो तार। जिस व्यक्ति के कर्णों में उनकी एक पुत्री है, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मी प्रिया। वो साक्षात लक्ष्मी देवी की तरह है, सारे अच्छे गुणों से संपन्न है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर निमाय का विवाह लक्ष्मी प्रिया से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो सती माता ने कहा कि ये मेरा बच्चा जो है पितृहीन है, इसके पिता का देहांत हो गया है, अभी ये विद्यार्थी है, इसको पढ़ने दो, आगे चल के विवाह की बात करेंगे। तो बड़े निराश होकर वनमाली घटक वहां से चले गए। ये वनमाली घटक वास्तव में कौन थे? रामलीला में विश्वामित्र थे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने ही भगवान श्री राम का विवाह सीता देवी से कराया था। और कृष्ण लीला में वो ब्राह्मण थे जिनको की रुक्मिणी देवी ने कृष्ण के पास भेजा था एक संदेश लेकर कि मेरा विवाह मेरे पिता और मेरे भाई शिशुपाल से करना चाहते हैं, तो कृपा से आप कृपा कीजिए और यहाँ आकर मुझे लेकर जाइए, मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो वही ब्राह्मण अभी वनमाली घटक के रूप में या चैतन्य लीला में आए। तो वनमाली घटक जब घर के बाहर जा रहे थे निराश होकर, तो उस समय दैव से निमाय पंडित अपने घर में लौट रहे थे। तो निमाय ने पूछा, अरे ब्राह्मण जी, पंडित जी, आप कहाँ से आए हैं? तो बोले, हाँ मैं आपकी माता से मिलकर आया हूँ, मैंने आपके विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन उनको पसंद नहीं आया। तो निमाय ने दो क्षण सोचा, कहा कि नहीं, मैं बात कर लूंगा। और सची माता के पास जाकर निमाय ने कहा कि अरे माता, विवाह का प्रस्ताव आपने स्वीकार नहीं किया। तो इतना इशारा जो है सची माता के लिए काफी था। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, आज के आज ही हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने वनमाली घटक को फिर से बुलाया और कहा कि कल जो आपने प्रस्ताव मेरे सामने रखा था उसमें आगे बढ़िए। तो वनमाली घटक बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी से गए वल्लभाचार्य के घर में। श्री श्री राधा गोकुलानंद की। वनमाली घटक गए वल्लभाचार्य के घर में और उन्होंने कहा, यह वल्लभ भट्ट, आप बड़े लंबे समय से आपके पुत्री के लिए घोड़े ढूंढ रहे हैं। यहाँ नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सखी देवी का पुत्र निमाय है विश्वभर, जो बड़ा विद्वान है और सारे अच्छे गुणों का सागर है। इससे विवाह करना आपकी पुत्री के लिए उचित होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इस मामले में आगे बढ़िए। तो वल्लभ भट्ट ने ये देखा तो बड़े खुश हो गए, कहने लगे, तुरंत, मेरा तो सौभाग्य है, मैं समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हुए होंगे और साक्षात लक्ष्मी देवी और पार्वती देवी मेरी कन्या के ऊपर प्रसन्न हुई होंगी, इसलिए ये अभी प्रस्ताव हमारे सामने आया है। अब ये वल्लभाचार्य वो वल्लभाचार्य नहीं है जिनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुई थी और जिन्होंने विष्णु संप्रदाय में दीक्षा ली थी और जो पुष्टि मार्ग के गुरु हैं, वो वल्लभाचार्य अलग हैं। ये वल्लभ भट्ट जो हैं, ये वल्लभ मिश्र, वास्तव में ये भीष्मक हैं, भीष्मक जो कि रुक्मिणी के पिता थे। और ये भी बताया जाता है कि ये जनक महाराज थे जो कि सीता देवी के पिता थे। ये चैतन्य लीला में वल्लभ भट्ट का रूप लेकर आए हैं और उनकी पुत्री लक्ष्मी प्रिया वो वास्तव में लक्ष्मी देवी थी। तो इस तरह से वल्लभ भट्ट बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि आज के आज आप जाके प्रस्ताव को सामने रखिए, लेकिन मुझे एक बात कहनी है और कहने में लज्जा होती है, और वो ये है कि मैं बड़ा गरीब हूँ, इसलिए मैं दहेज में कुछ नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 हरिता के फल दे सकता हूँ, तो क्या वो सची देवी को मंजूर होगा? तो वनमाली घटक ने कहा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो वनमाली घटक ने जाके सारे योजना सारी व्यवस्था कर ली और विवाह का दिवस नजदीक आया। विवाह के दिवस के पहले अधिवास उत्सव मनाया गया। जब भी कोई शुभ कार्य होने जाता है या कोई मंगल दिवस होता है, उसके पहले दिवस ये अधिवास मनाया जाता है, जिसमें फूलों की माला और चंदन अर्पण किया जाता है। तो ये अधिवास का महोत्सव मनाया गया और वल्लभ भट्ट भी वहां पर आए और निमाय को चंदन और फूल इत्यादि अर्पण किया गया। बाद में विवाह का दिवस आया और सूर्योदय के समय निमाय वल्लभाचार्य के घर में गए। बंगाल में प्रथा है कि जो वर होता है वो वधू के घर में जाता है और विवाह वधू के घर में होता है। अलग अलग प्रांतों में प्रथा अलग अलग होती है। तो जब निमाय वहां पहुंचे तो वल्लभ भट्ट और अन्य जो निवासी थे बड़े प्रसन्न हुए, हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया और फिर विवाह के जो भी विधियां थी وہ ہونے لگی. نمائے کو بیچ میں بٹھایا گیا اور پھر انی جو رشتے دار تھے انہوں نے لکشمی پریا کو اٹھایا اور سات بار پردکشنا کرایا نمائی کا. اور پھر لکشمی پریا نے اپنے ہاتھ جوڑ لی نمائی کے ساتھ میں اور ورمالا پہن لیے. اور اس طرح سے بڑے دھوم دھام سے شہنائی اور انی وادیوں کے بچتے ہوئے ویواہ سنسکار سمپن ہو گیا. اور جب وہ واپس آئے ویواہ سماپت ہونے کے بعد میں جب پھر سے نوبے اپنے گھر میں آئے تو اس سمے بہت سارے لوگ وہاں اکتر ہوئے تھے ور اور مدھو کا درشن کرنے کے لیے. بڑے شہنائی اتیادی واد بج رہے تھے, وہاں الولو کار چل رہا تھا جو بنگال میں جو آواز کرتے ہیں مہیلائیں, تو وہ آواز ہو رہا تھا شبھ دھونی مانی جاتی ہے. تو بنگال میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مایا پور میں گئے ہیں, اور جب کوئی شبھ گھڑی ہوتی ہے تو اپنے جو پاس ایک پرکار کی آواز نکالتے ہیں, تو وہ سب ایسے شبھ دھونیوں سے سواگت کرنے لگے. اور جب دونوں کو ور ودھو کو دیکھا نمائی کو لکشمی پریا کو جو کہ اتنے پرم سندر دکھ رہے تھے, اچھی طرح سے سجے ہوئے تھے, مکٹ مالا چندن اتیادی کاجل سے سوشوبھت, تو سارے وہاں کی مہیلائیں آپس میں بات کرنے لگی, ارے ایسا لگتا ہے یہ تو ساکشات شیو جی اور پاروتی جی ہیں. اوشی ان دونوں نے بہت لمبے سمے تک بھگوان کو نشکپٹ بھاونا سے سیوا کی ہوگی. کوئی اور کہنے لگے ارے یہ تو بالکل سیتا رام کے جیسے دکھتے ہیں. کوئی اور کہنے لگے ارے یہ تو ساکشات رتی اور کامدیو کی طرح لگتے ہیں. کوئی اور کہنے لگے ارے یہ تو اندر دیو اور شچی ماتا سچی کی طرح ہیں. اندر دیو کی پتنی کا نام بھی شچی ہے. تو اس طرح سے سبھی لوگ پرشنسا کرنے لگے ان کا, اور سبھی لوگ آنند کے ساگر میں ڈوب رہے تھے. تو اس طرح سے نمائے گھر میں آئے اپنے پتنی کو لے کر, اور سچی ماتا بڑے آنند سے سب کا سواگت کرتی رہی. سب جگہ ادھر ادھر تیوہار کا ایک واتاورن تھا, اور سچی ماتا سب مہیلاؤں کے سب کے اتھیوں کی سیوا کرنے میں مگن ہوئی تھی. ورنداون دس ٹھاکر فلشروتی بتاتے ہیں اس وواہ یجنی کا ورنن سننے کا. ویسے سادھارنتہ برہمچاری سنیاسی کو وواہ میں نہیں جانا چاہیے, وواہ کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر سنیں تو اچھا جاگرت ہو سکتی ہے کہ ہم خود بھی گرہست آشرم میں پرویش کریں. لیکن ورنداون داس ٹھاکر بتاتے ہیں کہ اس وواہ یجنی کا ورنن جو ویکتی سنے گا سنسار بندھن سے مکت ہو جائے گا. اس لیے ہم نے یہ وواہ کا ورنن کیا, نہیں تو ہمیں وواہ کا ورنن کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ یہ سادھارن وواہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اس وواہ کے بعد میں نمائے کی پوگنڈ لیلا سماپت ہو گئی اور ان کی کشور لیلا وہ آرمبھ ہو گئی. واستو میں کشور لیلا بھگوان کی یہ بھی بڑے منوہر من کو آکرشک کرنے والی ہے. کشور لیلا ان کی آرمبھ ہوئی 10 سال یا 11 سال کی عمر سے اور چلی 15 سال کی عمر میں. نو یوون کی لیلا, کرشن بھگوان ہمیشہ اس کشور اوستھا میں رہتے ہیں. نتیہ نو نوائمان نو یوونم چ, کرشن بھگوان ہمیشہ کشور اوستھا میں رہتے ہیں, لیکن جب نمائے کے روپ میں آتے ہیں تو کشور اوستھا سے بھی آگے بڑھ کر یوون کی اوستھا میں بھی جاتے ہیں. تو یہ نو یو یا کشور لیلا میں نمائے نے بھی ایسے کئی سندر سندر لیلائیں کرنے لگے. اپنے ٹول میں اپنے پاٹھشالا میں بھی ایسے واد وواد ان کا چلتا رہا, اور سارے ویشنو اور جو بھی انیک انیا بھوتک وادی لوگ بھی تھے وہ آشچرچکت ہو جاتے نمائے کے ودوتا کو دیکھ کر. جو بھوتک لوگ تھے سوچنے لگتے تھے کہ دھنی ہے وہ ماتا پتا جن کا نمائے جیسے پتر ہوا ہے, کاش ہمارے بھی ایسا کوئی پتر ہوتا. اور جو ویشنو تھے وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ نمائی اتنا بدھیمان ہے, اتنا سندر ہے کہ کاش اگر یہ بھکت ہوتا کرشن کا تو کتنا اچھا ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے ویشنو شلوک کرتے تھے کہ ویرتھ ہی یہ نمائی جو ہے اپنے ششک ویاکرن میں اور نیائے میں اپنا سمے برباد کر رہا ہے. اگر کیول وہ ایسے کرشن کی سیوا کرتا
تو کتنی
اچھی بات ہو جاتی. تو ایسے کبھی کبھی وہ نمائی کو ٹوکتے بھی تھے کہ ارے نمائی تم کیوں اپنا سمے برباد کرتے ہو. تو نمائی جواب دیتے ہاں ایک دن میں بھی ویشنو بنوں گا, ایک دن میں بھی ایک ورشٹھ ویشنو کی سیوا کروں گا, لیکن اب سمے نہیں آیا میرے لیے. تو اس طرح سے سمے بیتتا گیا. ایک بار ایسے ہوا کہ ویشنو جو الگ الگ جگہ سے آئے تھے وہ وہاں ملے, اور یہ لوگوں کی پرستھتی دیکھ کر, سماج میں پرستھتی دیکھ کر بڑے دکھی ہوتے تھے, تو نام سب کی تنقیا کرتے تھے. اور وہاں مکند نام کے ایک ویشنو تھے, اور مکند کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑا مدھر کیرتن کرتے تھے, اور اتنا مدھر کیرتن کرتے تھے کہ جب بھی ویشنو اس کیرتن کو سنتے تھے تو بھاو وبھور ہو کر زمین پر گر جاتے تھے, اور سب کے آنکھوں سے اشرو دھارا بہنے لگتی تھی, اور سب کو کرشن کا سمرن ہو جاتا تھا. اور مکند کے کیرتن سن کر ادوائت آچاریہ انیہ بھکت جو ہیں ہنکار کر کے نرتیہ کرنے لگتے تھے. اور اس سمے کوئی بھکت مایا دیوی کے جو دوت ہیں ان کو للکار کے کہتے ہیں اب آ کر تو دیکھو یہاں پرویش کرنے کے لیے کوئی تمہیں موقع نہیں ابھی, اب یہاں کرشن کا سنکیرتن چل رہا ہے. تو اس سے ہمیں جاننا چاہیے کہ جب ہم کرشن کا سنکیرتن کر رہے ہوتے ہیں تو مایا دیوی وہاں پرویش نہیں کر سکتی ہے. جب جاپ کرتے ہیں تو مایا دیوی بہت پرویش کرتی ہے من من, ندرا دیوی خاص کر کے ندرا کے روپ میں آتی ہیں, اور نانا پرکار کے دن بھر کے وچار ہمارے من میں آتے ہیں جاپ کرتے سمے. لیکن کیرتن کرتے ہیں تو پھر بھگوان کے اوپر دھیان اچھی طرح سے چلے جا سکتا ہے. اس لیے کلیوگ کا یوگ دھرم ہے ہری نام سنکیرتن. تو خیر مکند اس طرح سے سب کا من بالکل کرشن کے اوپر کیندرت کر دیتے تھے, اور نمائی خاص کر کے ویشنووں کو پکڑتے تھے. نمائی کی یہ عادت تھی کہ شہر میں جو بھی آدمی ملتا ان کو چنوتی دیتے تھے وعد کے لیے, تک کرتے تھے اس سے, کسی کو بھی چھوڑتے نہیں تھے. تو ویشنووں کو کیسے چھوڑتے, تو ویشنو کو بار بار پکڑ کے وہ ان سے وعد کرنے لگتے کہ کچھ نیائے کی بات کرو, کچھ ویاکرن کی بات کرو, اور ویشنو کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. اس لیے وہ ہمیشہ نمائی سے دور جانا چاہتے تھے. تو ایک بار ایسے ہوا کہ نمائی گنگا جی کے تٹ پر بیٹھے تھے ویراسن میں. ویراسن مطلب جب کوئی ویکتی اپنے بایاں پیر اپنے داہنے جنگے کے اوپر رکھتا ہے, اور دایاں پیر اپنے بائیں جنگے کے اوپر رکھتا ہے, اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے, اور داہنا ہاتھ ایسے ترک کے مدرا میں ہوتا ہے, اسے ویراسن کہتے ہیں. کئی بار آپ بڑے بڑے یوگیوں کی آچاریوں کی تصویر دیکھیں گے تو ایسے مدرا میں ہوتے ہیں, خاص کر کے مدواچاریہ کی, رامانوجاچاریہ, ایسے آچاریوں کی تصویر آپ دیکھیں گے ویراسن میں ایسے بیٹھے ہوئے. کبھی کبھی پروپاد جی کی بھی ایسی تصویر ہوتی ہے. تو ویراسن مطلب ویروں کے لیے ہے. تو ایسے ویراسن میں بیٹھ کر نمائی انہوں نے سنیاس کا یوگ پتر دھارن کر لیا تھا, تو سنیاسی کی طرف حالانکہ گرہست آشرم میں تھے اور اس طرح سے ویاخیا کر رہے تھے. تو اس سمے وہاں پہ مکند بھی آئے, تو مکند کی بھی وہ ٹیکا کرنے لگے. اس سمے مکند کہنے لگے کہ ارے تم اتنے گھمنڈی ہو کہ ہمارے ساتھ ترک کیے بنا تم ایسے ہم سے ہمارے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہو. تو نمائے پنڈت نے کہا کہ مکند تم اس بات کے اوپر ویاخیا کرو, اور کچھ ویاکرن کی بات کہی. مکند نے اچھے ڈھنگ سے جواب دیا لیکن پھر بھی آخر میں وہ ہار گئے. تو مکند سوچنے لگے ابھی مجھے ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے. اس طرح سے نمائی شریواس پنڈت اور انیہ ویشنووں کو بھی چنوتی دیتے تھے, اور سبھی لوگ آئے جاتے تھے. تو اس طرح سے ہر ایک ویشنو جو ہے وہ ان کے راستے سے دور چلے جاتا تھا. جب بھی وہ نمائی کو دیکھتے تو سوچتے کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. ہے سبھی ودوان سبھی شاستر کے تھے, لیکن پھر بھی یہ ششک ایک ویاکرن اور نیائے کے اوپر چرچا کرنا ان کو بالکل پسند نہیں تھا, کیونکہ بھکت کے گن یہ ہوتے ہیں کہ کرشن کے سوائے کسی اور وشے کے اوپر چرچا کرنے کے بالکل وہ اچھک نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ایسے سیکھنا چاہیے कि हमारे भक्तों के समाज में भी हमें भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण की सेवा के अलावा और किसी भी बात के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जब सारे वैष्णव उधर आते तो वो निमाई से दूर भाग जाते और निमाई सोचने लगते ठीक है एक दिन ये वैष्णव सब मैं पकड़ लूंगा, कहाँ जाएंगे भाग कर ये सब। तो अन्य वैष्णव जब एकत्र होते निमाई के बारे में हमेशा बात करते कि काश निमाई का सौंदर्य, इसकी विद्वत्ता, वास्तव में इसका जो इसकी बुद्धि है, इसका ज्ञान है, अमानुषी है, अलौकिक है, कोई साधारण व्यक्ति की बुद्धि ऐसे नहीं हो सकती। तो दूसरे भौतिक लोगों का दुख देख, भौतिक लोगों की अवस्था देखकर जब वैष्णव दुखी हो जाते थे तो अद्वैत आचार्य ने जब देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, कहने लगे कि मेरा नाम अद्वैत अगर है तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं कृष्ण को यहाँ बुलाकर ही रखूंगा। हे वैष्णवगण, आप सब शांत रहो, बहुत ही जल्द यहाँ श्री कृष्ण साक्षात चक्रधारी उपस्थित होने वाले हैं। इस तरह से अद्वैत आचार्य के वचन को सुनकर सारे वैष्णव जो हैं थोड़े बहुत शांत हो गए और कीर्तन करने लगे, उनके सारे दुख को भूल गए। अब ऐसा हो उस समय कि ईश्वरपुरी नाम के बहुत महान वैष्णव वहां पर आए जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी बड़े कृपालु स्वभाव के थे और भगवान श्री कृष्ण के महाभागवत शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो अपना वेश बदल कर आए नवद्वीप में, एक डंडी मायावादी सन्यासी के रूप में आए और दैव से सीधे अद्वैत आचार्य के घर के पास में आ गए। अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो दोनों अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी वो गुरु भाई बने। तो वहां पर आए और सीधे अद्वैत आचार्य के घर के अंदर जाकर जहाँ अद्वैत आचार्य पूजा में मग्न थे उनके पास में बैठ गए चुपचाप। जब अद्वैत आचार्य ने एक प्रकार का तेज देखा तो मुड़ के देखा और ईश्वरपुरी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, प्रभावित हो गए और नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे प्रभु आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे लगता है कि आप कोई वैष्णव सन्यासी है। हालांकि एक दंडी सन्यासी का रूप धारण किया था लेकिन उनको देखकर ही पहचान गए। तो ईश्वरपुरी कहने लगे, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ, शूद्र से भी नीचे, निम्न श्रेणी का, मैं केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने आया हूँ। उस समय मुकुंद भी वहां उपस्थित थे तो मुकुंद ने सोचा कि अभी इनकी परीक्षा करनी चाहिए, ये तो कोई मायावादी व्यक्ति नहीं लगते, ये तो कोई महान व्यक्ति लगते हैं। तो मुकुंद ने कृष्ण का कीर्तन करना शुरू किया और जैसे ही कृष्ण का कीर्तन शुरू हुआ तो तुरंत ईश्वरपुरी वहां बेहोश पड़ गए और उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, भक्ति के सारे लक्षण प्रकट होने लगे, प्रचुर मात्रा में अश्रु धारा बहने लगी, शरीर रोमांचित होगा, पुलक शरीर पुलक हो गया। इस तरह से अद्वैत आचार्य ने उनका आलिंगन कर लिया और अद्वैत आचार्य का पूर्ण अभिषेक हो गया ईश्वरपुरी के नेत्रों से अश्रु धारा की वजह से। और इस तरह से सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए ये देखकर कि ईश्वरपुरी ये वैष्णव है, उनको नाम नहीं मालूम था कि ये कौन है। और उस समय मुकुंद एक के बाद एक सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चारण करने लगे और जैसे जैसे ईश्वरपुरी सुनते भक्ति भावना उनकी और गाढ़ और तीव्र होती जाती। और अंत में जब सब कुछ शांत हो गया तो लोगों को पता चला कि ईश्वरपुरी है तो बड़े प्रसन्न हुए, सबने हरि का स्मरण किया। इस तरह से ईश्वरपुरी नवद्वीप में इधर उधर वेश बदलकर एक एक दंडी सन्यासी का वेश पहनकर वो घूमते फिरते थे। एक बार पहली बार निमाई पंडित से उनकी मुलाकात हुई, जैसे ही निमाई ने उनको देखा कि वो सन्यासी थे तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया और जब ईश्वरपुरी ने पहले निमाई को देखा तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत गंभीर, और ये चेहरे से ही पता चलता था उनको शरीर से कि ये बड़े कोई विद्वान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो तुरंत उन्होंने पूछा, अरे पंडित, ये ब्राह्मण तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो तुम और क्या सिखाते हो और क्या पढ़ते हो। तो उन निमाई के साथ में जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा, ये निमाई पंडित है। तो ईश्वरपुरी कहने लगे, अच्छा यही है निमाई, तो बहुत प्रसन्न हुए तुमसे मिलकर। तो इस तरह से निमाई पंडित की पहली मुलाकात हुई निमाय बड़े प्रभावित हुए लेकिन बाहर से ज्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो ईश्वरपुरी गोपीनाथ आचार्य नाम के वैष्णव के घर में रहने लगे। गोपीनाथ आचार्य वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य की बहन के पति थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम तो आप सबने सुना है। आगे चल के मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला में इनका वर्णन और आएगा। और इस तरह से वहां रहते हुए वो वैष्णवों से मिलते रहते थे। ईश्वरपुरी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था श्री कृष्ण लीलामृत। और गदाधर पंडित उस समय नौजवान थे, वैष्णव थे, बड़े विरक्त थे इस संसार से और शुद्ध कृष्ण भक्त थे। हमेशा कृष्ण के बारे में बातचीत करते रहते थे। सभी वैष्णव गदाधर पंडित से बहुत प्रेम करते थे। जब ईश्वरपुरी ने गदाधर पंडित को देखा तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए और गदाधर पंडित से बहुत प्रेम करने लगे। और रोज गदाधर पंडित ईश्वरपुरी के पास आते थे और कृष्ण लीलामृत सीखते थे। निमाय पंडित भी रोज वहां पर जाया करते थे ईश्वरपुरी का दर्शन करने के लिए। तो एक बार ऐसे हुआ कि ईश्वरपुरी ने कहा कि अरे निमाय, तुम तो बड़े व्याकरण न्याय इत्यादि के बहुत ही पंडित हो। मैंने ये ग्रंथ लिखा है श्री कृष्ण लीलामृत, तो कृपा करके इसको पढ़ो और इसमें जो भी दोष है मुझे बताओ ताकि इस ग्रंथ का सुधार मैं कर सकूं। तो निमाय ने जवाब दिया कि ये असंभव है। आपके किसी कृष्ण के भक्त के कार्य में या उसके वाणी में या उसके लिखे हुए शब्दों में कोई त्रुटि ढूंढना ये तो सबसे बड़ा पाप है। वास्तव में जो भी श्री कृष्ण के भक्त लिखते हैं या कहते हैं उनमें हमें कभी भी पाप ढूंढना नहीं चाहिए। और निमाय ने उदाहरण दिया कि अगर जब हम विष्णु को नमस्कार करते हैं तो हम कहते हैं ओम विष्णवे नमः, ये सही तरीका है नमस्कार करने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है और वो कहेगा ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः के बजाय विष्णाय नमः कहेगा, तो ये गलत बात है। लेकिन फिर भी अगर दोनों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है तो भगवान श्री कृष्ण उन दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। भगवान ये नहीं देखते कि कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। भगवान भक्त के हृदय में जो भक्ति भावना है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए दोनों को भगवान को नमस्कार करने का लाभ पूरा पूरा समान दृष्टि से मिल जाता है। इस तरह से हमें कभी भी भगवान के भक्तों के कार्यों में और उनके वचनों में त्रुटियां ढूंढने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बातें जब सुनी ईश्वरपुरी ने तो बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो निंदा करते हैं हरे कृष्ण संस्था के भक्तों की कि आप लोग श्लोकों का उच्चारण बराबर नहीं कर रहे हैं। और एक बार हम गए थे तो एक बड़े प्रसिद्ध परिवार के एक कुटुंब के बहुत जाने माने भारतवर्ष में ऐसे उनकी महिला वो एक उनकी बहुत ही वो आई थी मिलने, तो बोल रही थी कि आपका प्रोग्राम हम टेलीविजन पर देखते हैं, आपकी संस्था के भक्त आते हैं लेकिन हम बड़े निराश हैं क्योंकि ये लोग उच्चारण ठीक से नहीं करते हैं। जब कोई संस्कृत शब्द बोलते हैं इसका उच्चारण बराबर नहीं होता है। वो तो बड़े सुसंस्कृत परिवार से थी बट उनका उच्चारण वगैरह सही बिल्कुल बराबर था। तो हमने कहा कि ठीक है, हो सकता है ऐसे कि बराबर उच्चारण नहीं कर रहे हो लेकिन भक्ति मार्ग में इस तरह के उच्चारण पर इतना जोर नहीं दिया जाता, विद्वत्ता के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता। भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण ये है कि हमारे हृदय में भक्ति कितनी है। भगवान केवल ये नहीं देखेंगे कि हम शब्दों का उच्चारण कैसा कर रहे हैं। हाँ, हमें उच्चारण सही करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए लेकिन पर्याप्त मात्रा में शिक्षण न होने की वजह से या कोई दूसरे त्रुटि की वजह से उच्चारण ठीक नहीं भी हो रहा हो लेकिन अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो भगवान अवश्य उस चीज को स्वीकार करेंगे। कई लोग ये भी टीका करते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा कहते हैं, कृष्ण कहना चाहिए आपको, कृष्णा नहीं। हालांकि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी स्वयं कभी कभी कृष्णा कहा करते थे। वो महिला कहने लगी कि कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, कृष्ण का नहीं, कृष्ण और कृष्णा। तो आप लोग कभी कभी हरे कृष्णा कहते हो, आपने कृष्ण को कृष्णा बना दिया है, तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताया करते थे कि यह छोटा बालक अपने माँ के लिए रोता है, चाहे वो माँ बुलाए या मौ बुलाए या मी बुलाए, माँ को पता चलता है कि मुझे बुला रहा है, वो माँ तुरंत वहां पर चली आएगी। वो ये नहीं कहते कि इसने माँ ने बुलाया मौ बुलाया इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या है वो बात उस बच्चे में जो कि माँ को आकर्षित करता है? निस्सहाय ढंग से बच्चा बुला रहा है माँ को, बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर है, माँ के अलावा किसी और चीज को नहीं जानता, व्यक्ति को नहीं जानता, उसका सारा संसार ही जीवन ही माँ के ऊपर है। ठीक उसी तरह से कृष्ण भक्त वो होता है जो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर होता है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। इसलिए जब वो कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है तो निस्सहाय होकर करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे निस्सहाय भावना से की गई पुकार को सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं और आते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे ढंग से उच्चारण कर रहा है शब्दों का लेकिन भक्ति भावना नहीं है तो भगवान ऐसे जगह में नहीं जाते, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुजारी है, इसलिए वो केवल भक्त के यहाँ जाते हैं, शुष्क विद्वानों के पास नहीं जाते हैं वो। तो ये बातें जब निमाय ने समझाई तो क्या कहीं ईश्वरपुरी से, तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे तुमने जो बोला बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी तुम अगर मेरे ग्रंथ के अंदर कुछ त्रुटियां निकालोगे तो इस पर तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। तो जब ऐसे आदेश दिए ईश्वरपुरी ने तो निमाय ने स्वीकार किया और रोज ईश्वरपुरी के पास में आते और एक दो घंटे कृष्ण लीलामृत के ऊपर टीका कर चर्चा करते। एक दिन ऐसा आया कि निमाय पंडित ने पहली बार उनको उनके ग्रंथ में एक त्रुटि बताई जो निमाय को लगा के त्रुटि है। धातु की बात कर रहे थे, धातु का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। तो धातु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के धातु है जिसको कहते हैं आत्मनपदी, दूसरा है परस्मैपदी और उद्भावपदी। ये तीन प्रकार के धातु होते हैं। तो ईश्वरपुरी ने ये आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया था जो अपने फायदे के लिए किया जाता है आत्मनेपदी, और परस्मैपदी दूसरों के फायदे के लिए जो किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह आत्मनेपदी का प्रयोग गलत है, यहाँ पर परस्मैपदी होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी ने सोचा, कहने लगे ठीक है मैं विचार करूंगा। और उस रात ईश्वरपुरी ने गहराई से इस बात के ऊपर विचार किया और ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैंने जो लिखा था आत्मनेपदी वही सही है, यहाँ परस्मैपदी नहीं होना चाहिए। तो जब निमाय पंडित अगले दिन आए तो ईश्वरपुरी ने कहा मैंने गहरा विचार किया है तुम्हारी टीका के ऊपर, लेकिन जो मैंने पहले लिखा था वही सही है और तुमने जो कहा वो गलत है। और जब व्याख्या की, इस बात का स्पष्टीकरण किया ईश्वरपुरी ने, तो निमाय पंडित को भी मानना पड़ा। तो पहली बार निमाय पंडित किसी चीज में गलत साबित हुए, पहली बार निमाय पंडित हार गए और वो हारते समय बड़े प्रसन्न हुए। उनको बहुत आनंद आया कि वो हार गए ईश्वरपुरी के सामने। तो उन्होंने इस तरह से दंडवत किया और ईश्वरपुरी का संग करते रहे। तो ईश्वरपुरी तो चलते फिरते भक्ति के सागर थे, स्वयं श्री गोविंद उनके हृदय में विराजे थे, तो इस भक्ति भाव की वजह से वो चंचल थे। भक्ति भाव की लहरें उनको चंचल बना देती थी, इसलिए वो एक जगह रहते नहीं थे, कृष्ण को ढूंढते इधर उधर जाते थे। तो इस तरह से वो नवद्वीप छोड़कर अपने जगह चले गए। तो इस तरह से निमय और अपने वाद विवाद में आगे बढ़ते गए। एक बार ऐसे हुआ कि अपने शिष्यों के साथ में जब वो जा रहे थे तो मुकुंद से फिर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मुकुंद को देखा दूर से और मुकुंद ने जब देखा तो वहां से भाग गए। तो निमाय ने पूछा अपने शिष्यों से, उनका शिष्य एक था जिसका नाम था गोविंद, अरे गोविंद ये लड़का क्यों मुझे देखकर भाग गया? तो लड़का कहने लगा हो सकता है उसका कोई जरूरी काम था वो भाग गया, नहीं नहीं गोविंद ऐसा नहीं है, ये लड़का है मुकुंद, ये वैष्णव है, और वैष्णव को कृष्ण के अलावा और कोई बातें पसंद नहीं है। उसे न्याय व्याकरण की बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं है, और मैं तो केवल व्याकरण की बात करता हूँ, कृष्ण की बात नहीं करता, और मैं केवल व्याकरण शास्त्र पढ़ता हूँ और वो केवल वैष्णव शास्त्र भक्ति की शास्त्र पढ़ता है जैसे कि श्रीमद् भागवत, इसे वो यह नहीं आना चाहता। और जो वैष्णव होते हैं अपना समय ऐसे फालतू तर्क में व्यतीत नहीं करना चाहते, वो केवल कृष्ण के बारे में बोलना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से चले गए। लेकिन गोविंद ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं आगे चल के ऐसा वैष्णव बनूंगा, एक ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मेरे द्वार में खड़े हो जाएंगे मेरे दर्शन के लिए। और यही वैष्णव जो आज मेरे से भाग के जा रहे हैं वो मेरे संग के लिए भाग कर आएंगे, देखना तुम मेरी बात, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। तो इस तरह से कहते हैं महाप्रभु की लीला अपार है, कौन समझ सकता है इनको। तो वहां पर एक दिन उन्होंने गदाधर पंडित से मुलाकात की, गदाधर पंडित से भी कहा कि अरे गदाधर तुम न्याय सीखते हो ना, तो बताओ ये बात। तो गदाधर पंडित ने जवाब दिया और उन्होंने कहा अभी तुम मुक्ति की परिभाषा करो, मुक्ति क्या है। तो जो गदाधर पंडित ने उस दिन सीखा था अपने पाठशाला में मुक्ति के बारे में वो बता दिया। तो निमाय ने कहा सब गलत, सब गलत, तो और मुक्ति की परिभाषा करो। तो गदाधर बोलने लगे कि मुक्ति मतलब सारे हमारे कष्ट संकट जो नष्ट हो जाते हैं उसे मुक्ति कहते हैं। तो निमाय ने कहा बिल्कुल गलत, और फिर निमाय ने व्याख्या आरंभ किया और गदाधर सोचने लगे मैं कब यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि कोई भी निमाय के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी अद्भुत शक्ति। तो एक बार जब मुकुंद के बाद दूसरी बार आए और कहने लगे मुकुंद अभी मैं तुमसे तर्क करना चाहता हूँ, हाथ ही पकड़ लिया ताकि मुकुंद भाग न जाए, अब तुम भागोगे नहीं, मैंने पकड़ लिया तुमको, तुम क्यों हमेशा भाग जाते हो मेरे सामने से, अब चलो तर्क करते हैं। तो मुकुंद सोचने लगे आज इस निमाय को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, बार बार इतना घमंडी है, सबको पकड़ता है, बात करता है, और व्याकरण की दृष्टि में से इसका सामना करने वाला कोई नहीं है व्यक्ति, तो आज मैं अलंकार शास्त्र के बारे में बात करूंगा, ये तो केवल व्याकरण का शिष्य है, विद्यार्थी है। तो पहले तो दो चार बातें मुकुंद ने व्याकरण के ऊपर किए और निमाय ने तो बहुत आसानी से उसको काट दिया। तो मुकुंद ने कहने लगे अरे निमाय ये व्याकरण तो बच्चों का शास्त्र है, आप थोड़े अच्छे शास्त्रों की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, अलंकार की बात करते हैं। तो निमाय ने कहा पूछो। तो मुकुंद ने पूछना शुरू किया और निमाय के जवाब ऐसे आने लगे एक के बाद एक के बाद एक कि मुकुंद आश्चर्यचकित रह गए, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध रह गए, और बाद में अंत में फिर हंसे निमाय कहने लगे ठीक है मुकुंद अब घर जाओ, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अब फिर मेरे साथ कल सुबह आना है, फिर और चर्चा करेंगे। हर बार जब ऐसे होता था तो निमाय ऐसा ही जवाब देते थे, हराकर सामने को बिल्कुल मिट्टी कर देते थे, कचरा कर देते थे, और फिर कहते थे अगली बार आज रात को जाके अच्छी तरह से पढ़ाई करना, कल फिर से और चर्चा करेंगे। तो मुकुंद बिल्कुल स्तब्ध रह गए थे। तो निमाय के चरण कमलों से धूली लेकर सिर पर डाल के गए और जाके सर चकरा रहा था कि ये लड़का ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं मालूम इसको, इसे अलंकार शास्त्र कब पढ़े, लेकिन सारे ग्रंथ इसको मालूम है, हर प्रश्न का जवाब इसके पास है, ये लड़का बड़ा अद्भुत है। तो इस तरह सारे वैष्णव हमेशा यही सोचते थे। और निमाय पंडित कभी कभी जाकर गंगा जी के तट पर बैठते अपने शिष्यों के साथ घिरे हुए, और ऐसे बैठते थे लगता था कि साक्षात श्री कृष्ण जैसे ग्वाल बालों के बीच बैठे हुए हैं, और फिर वो व्याख्या करने लगते वीरासन में बैठकर, और सभी लोग हजारों की संख्या में शिष्य उनके पास में आते, पंडित जी ठाकुर जी मैं भी आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। तो निमाय जवाब देते अच्छा अच्छा आओ आओ तुम भी आओ, अच्छी बात है। तो निमाय ने ऐसा घमंड वहां प्रकट किया इस लीला के दौरान कि कोई इतना घमंड नहीं हो सकता। तो वैष्णव कभी कभी गंगा जी के तट में आते थे तो वो भी सुनते थे और देखते थे, और खास करके प्रार्थना करते थे, एक दूसरे से बोलने लगे कि अगर ये निमाय भक्त हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो आपस में कहते थे अरे भाई हम सबको आज प्रार्थना करना चाहिए गंगा जी से कि निमाय को भक्त बनना चाहिए। तो सभी लोग गंगा जी से श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके इसको सद्बुद्धि दीजिए और इसको भक्त बनाइए, इसको वैष्णव बनाइए। तो और फिर वो टोकने लगे निमाय को, अरे निमाय तुम क्यों व्यर्थ इस शुष्क ज्ञान में व्याकरण में अपना समय बर्बाद करते हो, लेना चाहिए भक्ति के लिए ये सब ज्ञान व्याकरण इसे क्या मतलब है। और एक बार जब उन्होंने श्रीवास ठाकुर को मिले तो श्रीवास पंडित जोर से उनको टोकने लगे, अरे उद्धतरों में से उद्धतरों की चुड़ामणी, अहंकारी व्यक्तियों की चुड़ामणी, आओ इधर, तुम क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण की भक्ति करो। तो बहुत नम्रता से निमाय ने सुना और कहा अब नहीं, समय आएगा मेरे लिए, मैं अवश्य आपसे बात मानूंगा, आप मेरे शुभ चिंतक हैं इसलिए आप मुझे ये सब कह रहे हैं, ठीक है एक दिन मैं भक्त बनूंगा। तो ऐसे लीलाएं करते रहे। और जब भक्त किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो थोड़ी भक्ति से बच सकता है, फिर उसको तो भक्त होना ही है। तो इस तरह से निमाय ये सोच रहे थे कि मुझे भी एक न एक दिन भक्त होना ही है, जब भक्तों के आशीर्वाद मिल गए हैं। तो निमाय इस तरह से चलते थे, जहां भी जाते थे तो ऐसे घमंड से चलते थे कि 20-40-50 हजारों लोग उनके साथ में, सभी लोग देखकर उनका सौंदर्य को, विद्वत्ता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। बूढ़े लोग भी आकर उनको प्रणाम करते थे और जो महिलाएं हैं वो उनको साक्षात कामदेव के रूप में देखते थे, जो पापी लोग थे वो साक्षात उनको यमराज के रूप में देखते थे, जो विद्वान लोग थे उनको वास्तव में बृहस्पति साक्षात के रूप में देखते थे। जैसे कृष्ण को लोग अलग अलग दृष्टि से देखते थे वैसे निमाय को भी, और जो वैष्णव थे वो भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि इनको वैष्णव बनाइए भगवान। तो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण निमाय के रूप में आए, वैष्णव उनको बार बार दिन भर देखते रहते थे लेकिन फिर भी उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि योग माया की शक्ति ने उनके आंखों के सामने एक आवरण खड़ा कर दिया था, इसलिए अपने ही प्राण धन श्री कृष्ण को वो लोग पहचान नहीं पाए। और इसके बाद में ऐसा हुआ कि निमाय ने पहली बार भक्ति के लक्षण प्रकट किए, अष्ट सात्विक विकार प्रकट किए, और उन्होंने ये बताया कि मुझे वायु का विकार हुआ है, पेट में पेट की बीमारी हुई है, और इसको एक बहाना बनाकर ये भक्ति के लक्षण प्रकट किए। और ऐसे भयंकर लक्षण प्रकट किए कि सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबसे पहले तो वो जमीन पर लौटने लगे और इधर उधर हाथ फैलाने लगे, डंडा लेकर सब जगह मार दिए, प्राय घर को तोड़ दिया, और जोर जोर से हुंकार करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और सभी के ऊपर कूद कर उनको पीटने लगे। तो इधर उधर तहस नहस हो गया सब जगह, और फिर सब जगह से लोग आए, उनके रिश्तेदार बुद्धिमंत खान आए और मुकुंद संजय आए, सारे ब्राह्मण इधर उधर से आए, सब अपना अपना सब कोई ना कोई दवा औषध सब जड़ी बूटी लेकर आए, और विष्णु तेल नारायण तेल का मालिश करने लगे उनके सर पे ताकि वायु विकार ठीक हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु निमाय ने फिर से जोर से कहने लगे कि मैं विश्वंभर हूँ, सारे विश्व का पालन पोषण करने वाला, धारण करने वाला मैं विश्वंभर हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोग मुझे नहीं पहचानते हो। तो सब लोग सोच रहे थे वायु विकार की वजह से ऐसे सब बोल रहा है। तो ठीक है, ऐसे किसी न किसी तरह से महाप्रभु लीला करने लगे। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं क्यों भगवान ऐसे लीला करते थे वो ही जाने, और वो कहते हैं कि भगवान अपनी स्वेच्छा से ही लीला करते हैं। तो अपनी स्वेच्छा से सब जो इस तरह से वो कार्य कर रहे थे पागल व्यक्ति की तरह है, तो भला कोई औषधियां जड़ी बूटी क्या काम कर सकती है। भगवान की स्वेच्छा से लीला आरंभ हुई और स्वेच्छा से लीला बंद भी होनी थी। तो जब निमाय ने ऐसे लीला समाप्त की तो अपनी ही स्वेच्छा से ऐसे लीला बंद कर दी, लेकिन किसी को समझा नहीं कि ये क्या हुआ। सभी लोग सोच रहे थे कि केवल वायु का विकार हुआ, और सभी लोग कहने लगे कि हाँ ऐसे पंडित को तो लंबा आयु होना चाहिए, किसी को जल्दी ऐसे विकार नहीं होने चाहिए। इस तरह से निमाय लौट कर फिर से आए, आकर फिर से विष्णु की पूजा की, तुलसी पर जल अर्पण किया और फिर अपने प्रसाद के लिए बैठे। लक्ष्मी प्रिया देवी ने उनको अन्न वगैरह दिया और पेट भर के निमाय ने भोजन ग्रहण किया। और सती देवी ये सब देख कर बड़े खुश थी, देख रहे थे कि बहू और बेटे कैसे आपस में व्यवहार कर रहे हैं, एक आदर्श गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। तो खिलाया और फिर निमाई ने पान चबाना शुरू किया। हाँ, हमें नहीं करना चाहिए, वो स्वयं विष्णु है तो वो चबा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चबाना, हमारे लिए वर्जित है। तो चबाया और फिर थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे और लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा करने लगी, चरणों को दबाने लगी। और फिर से निमाई जो है वो अपने पाठशाला में गए और निमाई इस तरह से नवद्वीप तक घूमते फिरते रहते थे और ऐसे कोई भी घर नहीं था जहाँ निमाई नहीं जाते थे। जिस प्रकार से कृष्ण ने जाकर अलग अलग तरह के लोगों को का उद्धार किया, कहीं जाके फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले का उद्धार किया, कहीं धोबी के पास गए, तो इस तरह से निमाई भी हर एक घर में जाते थे। तो एक दिन निमाई एक कपड़े बेचने वाले, बुनाई करने वाले के घर में गए और कहा कि मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए। तो बुनाई वाले ने कहा हाँ आइए आइए, ले लीजिए कपड़ा। तो निमाई ने कहा कितने पैसे देने चाहिए? आप जितना चाहे उतना दें, नहीं दे भी चलेगा, 10-15 दिन बाद में दीजिए, आप ले जाइए। तो ये सेवा हुई उस बुनाई वाले की, तो निमाई ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाई और आगे चले गए। आगे चल के थोड़े गोपगणों के घर में गए जो गायों को संभालते थे, दूध निकालकर बेचते थे, तो उनके पास गए। और वास्तव में बंगाल में उस समय प्रथा थी कि जो अन्य जाति के लोग, वर्णों के लोग होते थे, वो ब्राह्मण को फिर आदर सत्कार से देखते थे। तो जो महिलाएं होती थी वो निमाई को बड़े ठाकुर कैसे पुकारते थे, मतलब बड़े भाई। एक ऐसी प्रथा थी कि चाहे कोई ब्राह्मण अब उम्र से भी कम हो, लेकिन जो दूसरे वर्णों के लोग होते थे उनको बड़े भाई कहकर पुकारते थे। तो इनके जो पुत्र थे वो उनको मामा कहकर पुकारने लगे कि आइए मामा, मामा आइए, जल्दी आइए। तो वहां गए गोपगणों के घर में और वहां उनको आसन दिया और कहने लगे कि मुझे दूध और दही खिलाओ। और फिर दूध दही लाए और उनको घर में लेकर गए, अच्छा सा उनका स्वागत किया, उनको खिलाया पिलाया, उनको अन्न भी दिया। और फिर उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में आप जब आए थे इसी तरह से और हमसे आपने दूध लिया था। वो यूं ही मजाक में कह रहे थे, उनका मतलब ये था कि पिछले जन्म ये कृष्ण थे और कृष्ण जैसे ग्वाल बालों के संग में आकर दूध और मक्खन चुराया करते थे, आप वैसे ही हमारे घर में आए हैं। उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन सरस्वती देवी ने वास्तव में सत्य ही उनके मुख से बोल दिया कि निमाई वास्तव में श्री कृष्ण थे। तो इस तरह से इन ग्वाल बालों के ऊपर कृपा करके निमाई पंडित फिर आगे चले गए। वहां पे एक सुगंध गंध बेचने वाला जो वाणिज्य है उसके पास गए और कहा कि मुझे थोड़े सुगंध दीजिए, अत्तर इत्यादि लीजिए। कितने पैसे? आपके लिए कोई पैसे नहीं, आप ये अपने शरीर पर लगाइए और कल स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद में अगर ये सुगंध फिर भी रहेगा तब आकर मुझे पैसा दीजिए। मतलब वो सुगंध इतना शक्तिशाली, स्नान करने के बाद भी वो सुगंध नहीं जाता था ऐसे। तो इस तरह से निमाई जी उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और आगे चले गए। वहाँ एक फूल बेचने वाले के पास आए, उससे हार ले लिया, उसके ऊपर कृपा बरसा दी। ऐसे हर एक घर में जाते थे और आगे चल के एक ज्योतिष के घर में आए और कहने लगे, हे सर्वज्ञ, हे ज्योतिष महाशय, कृपा करके मुझे बताया कि पिछले जन्म में मैं कौन था। अभी जैसे ही वो उस ज्योतिष के घर में आए तो उस ज्योतिष ने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका तेज इतना था मानो सूरज ही उनके घर में आ गया। तो ज्योतिष ने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट बैठिए। तो ज्योतिष ने अपनी आंख बंद की, अपने ही मुंह में गोपाल मंत्र का उच्चारण किया और ध्यान में वो देखने लगे। वास्तव में ज्योतिष, सही ज्योतिष ऐसे होते हैं, पूर्व काल में जो होते थे ज्योतिष, उनकी भक्ति की वजह से इतनी शुद्धता थी हृदय में, विशेष शक्ति थी जिससे कि वो अपने मन ही मन में अपने ध्यान से सब देख सकते थे। इसलिए ज्योतिषों को पहले जमाने में सर्वज्ञ कहते थे, जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को जानता है। ऐसा नहीं आजकल के समय, जैसे 10 जो ज्योतिष है, 10 अलग अलग चीजें बोलते हैं, 10 भी सब गलत हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर आप देखते हैं बहुत कम ऐसे ज्योतिष हैं जो वास्तव में शुद्ध है। और ऐसे ज्योतिष जो है केवल पैसे के लिए नहीं करते थे, तो बाल गोपाल का मंत्र का उच्चारण करके अंदर ही अंदर वो ध्यान में देखने लगे। क्या देखा? अचानक उन्होंने देखा एक श्याम वर्ण का रूप चतुर्भुज, और इस चतुर्भुज रूप में चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म और वक्षस्थल पे श्रीवत सफेद बाल और वक्षस्थल पर लटकता हुआ कौस्तुभ मणि। साक्षात उन्होंने नारायण का दर्शन किया। वास्तव में भगवान के चतुर्भुज जो रूप में ये जो अलग अलग सामग्री भगवान पकड़ते हैं इनके भी नाम है। कोई नाम बता सकते हैं? शंख चक्र गदा पद्म भगवान श्री कृष्ण के जो हैं, उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। उनके चक्र का नाम क्या है? ये आसान है, सुदर्शन। उनके गदा का नाम क्या है? कौमोदकी। और पद्म का नाम क्या है? ये कठिन है, श्रीवास। तो ये सब ये व्यक्ति हैं, गदा भी व्यक्ति है, पद्म भी व्यक्ति है, जो भी भगवान की सामग्री होती है ये सब व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चेतन है, हर एक वस्तु एक व्यक्ति है। और कौस्तुभ और श्रीवत्स, और उनके धनुष का नाम क्या है? शारंग। और फिर उनके तलवार का नाम क्या है? नंदक। और उनके हाथ में जो मणि होती है उसका नाम क्या है? सेमंतक। अनंतक मणि की कथा आप जानते हैं ना। तो इस तरह से ये दृश्य देखा उस ज्योतिष ने, सर्वज्ञ ने। और फिर और आगे दृश्य बढ़ता गया और उन्होंने देखा कि छोटा बालक है, घुंघराले बाल, मोती जैसे दांत, कमल नयन, और वो देवकी वसुदेव के सामने है। और फिर वसुदेव उनको जमुना पार करके गोकुल में ले जा रहे हैं। और फिर आगे की लीलाएं देखी, और ये सब लीलाएं देखने के बाद ये उनका ध्यान टूट गया और सामने उन्होंने फिर से निमाई को देखा और बड़े भ्रमित हो गए कि क्या देख रहा था मैं, शायद कुछ हो गया होगा। तो फिर से उन्होंने ध्यान में प्रार्थना की, हे बाल गोपाल, कृपा करके मुझे बताइए कि ये जो ब्राह्मण मेरे सामने बैठा है पिछले जन्म में कौन था। बाल गोपाल ने उनको बता दिया था कि वो कौन था, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आया। तो फिर भी ध्यान में गए दूसरी बार। अब उन्होंने क्या देखा? अब उन्होंने देखा कि सागर के प्रलय जल में तैरते हुए मत्स्य अवतार, और हिरण्यकश्यप कवच करते हुए नरसिंहदेव, और भिक्षा मांगते हुए और बलि महाराज का दमन करते हुए वामन देव, और फिर जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया को भी देखा, और अनेक अवतारों को इस तरह के क्रम से वो देखते गए अपने ध्यान में। फिर से ध्यान टूट गया। उन्होंने वास्तव में ये अच्छी तरह से देख लिया था कि ये ब्राह्मण पिछले जन्म में कौन था, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसे ही बाल गोपाल ने मुझे कुछ भगवान का दर्शन कराया लेकिन यही वो भगवान है, वो नहीं समझ पाए। और फिर सोचने लगे मन ही मन, शायद ये कोई बड़े योगी होंगे या कोई देवता मेरी परीक्षा लेने आए होंगे, या तो कोई और व्यक्ति मेरे ठगने आया होगा शायद, या इसके कोई मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत निपुण होगा। तो उसने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे शांति से मेरा मंत्र का उच्चारण करने दीजिए, मैं शाम को आपको बताऊंगा आप कौन थे पिछले जन्म में। तो इस तरह से निमाय वहां से चले गए, और इस तरह से वो जगह जगह जाते, जैसे एक शंख बेचने वाले वाणिक से भी उन्होंने शंख ले लिया, ऐसे हर एक घर घर में जाके हर एक व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसाते थे, ठीक उसी तरह से जैसे श्री कृष्ण मथुरा में जाया करते थे। और इस तरह से निमाई ने सारे नवद्वीप का उद्धार कर दिया, और आगे चल के उनकी केशव लीला, और हो सके तो कल समाप्त कर लेंगे केशव लीला, नहीं हुआ तो अगले साल में और जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
जैसे कि उत्तर भारत में लोग एक उदाहरण देते हैं कि नारद मुनि और एक किसान का, कि नारद मुनि मतलब इतनी ज्यादा भक्ति करना आवश्यक नहीं है, प्रायः मुझे ये प्रश्न झेलना पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि इतनी ज्यादा जो भक्ति कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो बताते हैं कि नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण या भगवान का नाम जप करते हैं, एक प्रकार एक किसान जो खेत में थोड़ा काम करता है और फिर सुबह शाम
मटके की कहानी सर पे लग के जाओ,
हाँ वो पानी तेल या पानी जो है।
वास्तव में यह कहानी हमने तो किसी अधिकृत शास्त्र में नहीं देखा, पढ़ा है, सुना नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते कि ये कोई प्रामाणिक कथा है, हम कह नहीं सकते। और नारद मुनि इतने अच्छे भक्त हैं, कौन उनको सिखा सकता है भगवान के अलावा कि भक्ति क्या है। इसलिए नारद जी का ये ऐसे प्राय अपमान ही हो जाता है। इसलिए ये कथा प्रभुपाद जी ने तो कभी नहीं बताई थी और नहीं कोई शास्त्रों में इसका जहां तक हमें मालूम है वर्णन आता है, इसलिए हमको बताना चाहिए। ये तो एक लोक कथा है, लोक परंपरा में चलती आ रही है, ये बस किसी ने शुरू कर दिया तो नारद मुनि का नाम ले लिया, कुछ उनको अपना सिद्धांत सिद्ध करना था तो नारद मुनि का नाम लेकर कुछ वो बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर निताय की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।